कमरे में रोशनी थी। एक तरफ टेबल के उस पार पुलिस ऑफिसर बैठा था, सामने कुर्सी पर आर्यन। कमरे में घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। ऑफिसर ने फाइल बंद की और आर्यन की तरफ देखते हुए बोला, देखिए मिस्टर राजवंश, बात चाहे जो भी हो, आपको हमें सब कुछ साफ साफ बताना होगा। आर्यन ने शांत लेकिन थकी हुई आंखों से उसकी तरफ देखा। अगर ये सब आपने नहीं किया, ऑफिसर ने आगे कहा, तो आपको किसी पर शक तो होगा ही। हमारी टीम पूरी तरह काम में लग चुकी है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, आपके पार्टनर्स, आपके हिस्सेदार, सबसे पूछताछ चल रही है, उसने थोड़ी देर रुककर कहा। लेकिन हमें आपकी तरफ से भी नाम चाहिए, कोई एक भी नाम। आर्यन ने बिना झुके जवाब दिया, मेरा कोई भी हिस्सेदार इसमें शामिल नहीं है। ऑफिसर ने भौहें चढ़ाई, आप पूरी जिम्मेदारी से ये कह रहे हैं? बिल्कुल, आर्यन बोला, मेरे लोग मेरे साथ सालों से काम कर रहे हैं, मैं किसी पर उंगली नहीं उठा सकता क्योंकि मुझे किसी पर शक नहीं है। ऑफिसर ने कुर्सी पीछे खिसकाई, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सब किसी बाहरी आदमी ने किया है? आर्यन की आवाज़ थोड़ी सख्त हो गई, हाँ, ये किसी की साजिश है, कोई ऐसा इंसान जिसने मेरी कंपनी के सिस्टम का फ़ायदा उठाया और मुझे फंसाने की पूरी प्लानिंग की। लेकिन बिना अंदरूनी मदद के ये मुमकिन नहीं, ऑफिसर ने तुरंत टोका, ट्रक रूट टाइमिंग सब कुछ इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? आर्यन ने गहरी सांस ली, अगर आप मुझसे सच पूछ रहे हैं तो यही सबसे बड़ा सवाल है कि किसे मेरी कंपनी की हर चाल की इतनी जानकारी थी। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। ऑफिसर ने फिर सवाल किया, आपकी कंपनी में हाल ही में कोई विवाद, किसी से झगड़ा, किसी को पावर या पैसे का नुकसान? आर्यन ने सोचते हुए कहा, दुश्मनी तो बिजनेस में सबकी होती है, लेकिन इतनी गंदी चाल, ये कोई आम दुश्मन नहीं हो सकता। वकील पूछताछ वाले कमरे से बाहर आया, उसके चेहरे पर गंभीरता थी। बाहर इंतजार कर रहे शिव मेहता और सानवी तुरंत उसकी तरफ बढ़े। क्या हुआ, शिव ने पूछा। वकील ने धीमी आवाज में कहा, केस आसान नहीं है, मगर अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। उसने अपनी फाइल बंद की, मैं सीधे कोर्ट जा रहा हूँ, आज ही जमानत की कोशिश करेंगे। इतना कहकर वो तेज कदमों से वहां से निकल गया। शिव मेहता और सानवी एक दूसरे को देख रहे थे। पुलिस स्टेशन के बाहर माहौल अब भी भारी था। शिव मेहता रिसेप्शन के पास खड़ा था जब एक पुलिस ऑफिसर उसकी तरफ आया। शिव ने तुरंत कहा, हमें मिस्टर राजवंश से मिलना है। पुलिस ऑफिसर ने फाइल देखते हुए सिर हिला दिया, अभी नहीं, वो किसी से मिलने से मना कर चुके हैं। ये सुनते ही सानवी आगे बढ़ी, उसकी आवाज़ में घबराहट थी मगर हौसला भी। मैं उनकी वाइफ हूँ, उसने साफ कहा, मुझे उनसे बात करने का हक है। ऑफिसर ने एक पल उसे देखा, फिर दूसरे ऑफिसर की तरफ देखा। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद वो बोला, ठीक है, आप अंदर जा सकती हैं। उसी वक्त अंदर की तरफ से इंद्र भी वहां पहुंच गया। उसे अभी अभी पता चला था कि आर्यन को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑफिसर ने सख्ती से कहा, आप दोनों यहीं रुकिए, अंदर सिर्फ वही जाएंगे। अंदर का कमरा, आर्यन को किसी जेल में नहीं रखा गया था, वो पुलिस स्टेशन के एक अलग कमरे में था जहां सोफे लगे हुए थे और माहौल अपेक्षाकृत शांत था। पुलिस अपनी तरफ से पूछताछ कर रही थी, लेकिन अभी तक आर्यन पर ज्यादा सख्ती नहीं बरती गई थी। जैसे ही सानवी कमरे में दाखिल हुई, आर्यन की नज़र सीधे उस पर गई। मैंने क्या कहा था सानवी, उसने हल्की नाराजगी और चिंता के साथ कहा, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें घर पर ही रहना था। सानवी उसकी तरफ बढ़ी, तो क्या मैं आपको अकेला छोड़ देती? उसकी आवाज़ कांप रही थी मगर इरादा मजबूत था। मैं अकेली नहीं आई हूँ, मेरे साथ रिया है, शिव भी यहीं है और इंद्र भी अभी अभी पहुंच गया है। आर्यन कुछ पल चुप रहा, उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ डर था सानवी के लिए। तुम जानती हो मैं तुम्हें इस सबसे दूर रखना चाहता था, उसने धीरे से कहा। सानवी ने उसका हाथ थाम लिया, और मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती, उसने जवाब दिया। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, भर रिया जो सानवी के साथ आई थी। मुझे चाय पीनी है, उसने थकी हुई आवाज में कहा। शिव मेहता ने उसकी हालत देखी और तुरंत बोला, चलो बाहर चलते हैं। दोनों बाहर की तरफ निकल गए। वहीं इंद्र रुक गया, वो सानवी को ऐसे ही अकेला छोड़ने वाला नहीं था। उसी वक्त उसकी नज़र जमीन पर गिरे एक धागे पर पड़ी, पतला सा, ब्रेसलेट जैसा। इंद्र ने झुककर उसे उठाया, उसने उसे गौर से देखा। ये सानवी का ब्रेसलेट था, सानवी जो जिससे इंद्र बेहद प्यार करता था। मगर सानवी ने उसकी जगह आर्यन को चुना था, ये बात अलग थी, मगर उसका प्यार सानवी के लिए कम नहीं हो सकता था। उसने वो ब्रेसलेट उठाया और अपनी पॉकेट में डाल दिया था, सानवी की निशानी के तौर पर। कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था, आर्यन की नज़र अचानक उस तरफ गई। बाहर इंद्र खड़ा था, खुले दरवाजे से उन दोनों को देख रहा था। आर्यन ने चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आने दिया, वो बिल्कुल सामान्य दिखना चाहता था। उसने सानवी को धीरे से अपनी बाहों में खींच लिया और बहुत हल्की आवाज़ में उसके कान के पास कहा, इंद्र हमें देख रहा है। सानवी ने बिना कुछ कहे अपनी बाहें उसकी पीठ पर और कस लीं। दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए थे। घबराओ मत, मैं जल्दी ही बाहर आ जाऊंगा, आर्यन ने बहुत सुकून भरी आवाज़ में कहा। आर्यन सच में सानवी से दूर नहीं रह पा रहा था, और सानवी भी। दोनों ऐसे ही खड़े रहे, एक दूसरे की सांसों को महसूस करते हुए। मैं बहुत डर गई थी, सानवी ने धीमी आवाज में कहा, जब आपको गिरफ्तार किया गया। ये कोई औपचारिक बात नहीं थी, उसकी आवाज में डर साफ था, सच्चा कच्चा डर। आर्यन की पकड़ और नरम हो गई। अब मैं यहाँ हूँ, उसने कहा। थोड़ी देर बाद अब भी उसके गले लगी हुई सानवी ने फुसफुसाकर पूछा, क्या इंद्र चला गया? आर्यन ने दरवाजे की तरफ देखा, इंद्र वहां नहीं था, फिर भी उसने झूठ बोल दिया। हाँ, चला गया, क्योंकि उस पल सानवी का यूं उसकी बाहों में होना उसे ऐसा सुकून दे रहा था जो वो किसी और चीज में महसूस नहीं कर पाया था। कुछ सेकंड बाद उसने खुद को संभाला और धीरे से सानवी से अलग हुआ। तुम फिक्र मत करो, उसने भरोसे से कहा, मैं घर आ जाऊंगा, आज शाम तक नहीं तो कल मेरी जमानत हो जाएगी। फिर थोड़ा गंभीर होकर बोला, वैसे भी मुझे उन ड्राइवरों को भी छुड़ाना है, मेरे आदमी हैं, मैं जानता हूं उनमें से कोई भी गलत नहीं है। दोनों पास ही बैठ गए। मुझे पूरा यकीन है, आर्यन ने कहा, ये सब विक्रांत का काम है। सानवी ने उसकी तरफ देखा, डर, भरोसा और प्यार सब एक साथ उसकी आंखों में था। आर्यन ने उसका हाथ थाम लिया। एक बात सुनो, उसने धीरे से कहा, मेरी गैर मौजूदगी में तुम अपनी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखना, इधर उधर बिल्कुल मत घूमना, घर पर रहना, पूरी सिक्योरिटी है वहां। उसकी आवाज में आदेश नहीं चिंता थी, सच्ची चिंता, क्योंकि इस सब के बीच आर्यन को अगर किसी की सबसे ज्यादा फिक्र थी तो वो सिर्फ सानवी थी। और सानवी ये बात अब बिना शब्दों के समझ चुकी थी। वे लोग चाय पीकर वापस आ चुके थे, लेकिन सानवी अभी तक बाहर नहीं आई थी। इंद्र वहीं बाहर कुर्सी पर बैठा हुआ था, नजर लगातार उसी दरवाजे पर टिकी हुई जहां से सानवी को निकलना था। सानवी अभी तक बाहर नहीं आई, रिया ने बेचैनी से पूछा। इंद्र ने सिर हिलाया, नहीं अभी तक नहीं। कुछ पल चुप्पी रही, फिर इंद्र ने गहरी सोच में डूबे हुए कहा, शिव तुम्हें क्या लगता है आर्यन को किसने फंसाया होगा? शिव मेहता ने ठंडी सांस ली, उसका चेहरा गंभीर हो गया। आर्यन जैसा आदमी है, उसने धीरे से कहा, उसके बहुत ज्यादा दुश्मन नहीं है। वो एक पल रुका, फिर बोला, और जो है उसका नाम शायद तुम्हें अच्छा ना लगे। इंद्र ने उसकी तरफ देखा, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। विक्रांत कपूरिया, उसने बिना सोचे कहा। शिव ने सिर हिलाया, हाँ ये सब जय की कस्टडी के लिए किया जा रहा है, शिव ने पूरी यकीन के साथ कहा, ताकि कस्टडी उनके हाथ से ना जाए। रिया ध्यान से सुन रही थी। जिस दिन उनके हाथ से जय की कस्टडी जाएगी, शिव ने बात आगे बढ़ाई, उसी दिन जय के शेयर भी चले जाएंगे। उसकी आवाज और सख्त हो गई, और जैसे ही वो शेयर गए, कंपनी पर उनका राज खत्म।
इंद्र की आंखों में ठंडक आ गई। इसलिए आर्यन को फंसाया जा रहा है, शिव ने साफ शब्दों में कहा, ताकि वो खेल से बाहर हो जाए। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर जोड़ते हुए बोला, विक्रांत किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि ये सिर्फ जय की कस्टडी का मामला नहीं है। उसने इंद्र की तरफ देखा, ये जय के 25% शेयर का मसला है। इतनी बड़ी हिस्सेदारी के लिए